नमस्कार, दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि उनकी सरकार ने 2014 में सत्ता में आने के बाद सशस्त्र बलों के लिए वन रैंक वन पेंशन योजना शुरू की। अब तक 1,20,000 करोड़ रुपए से अधिक वितरित हुए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महिलाओं के खिलाफ अत्याचार पर चिंता जताई, महिला सशक्तिकरण के लिए संयुक्त प्रयास का आह्वान किया। संयुक्त राष्ट्र महासभा में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ द्वारा जम्मू कश्मीर का जिक्र करने पर भारत ने पलटवार किया और इसे पाखंड की पराकाष्ठा करार दिया। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज न्यूयॉर्क में 79वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा के उच्च स्तरीय सत्र को संबोधित करेंगे। मुंबई पुलिस ने केंद्रीय खुफिया एजेंसियों की संभावित आतंकवादी हमलों के बारे में चेतावनी के बाद हाई अलर्ट जारी किया। और कानपुर में ग्रीन पार्क स्टेडियम में भारत तथा बांग्लादेश के बीच दूसरे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच में दूसरे दिन का खेल वर्षा के कारण बाधित। दोपहर समाचार के साथ मैं लवली निगम। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के तीसरे और अंतिम चरण तथा हरियाणा में एक ही चरण के मतदान के लिए राजनीतिक दलों ने चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। जम्मू कश्मीर में अंतिम चरण में विधानसभा की 40 सीटों के लिए 1 अक्टूबर को मतदान होगा। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जम्मू कश्मीर के लोग अपने बच्चों के लिए शांति और बेहतर भविष्य चाहते हैं। जम्मू में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव के पिछले 2 चरणों में हुआ भारी मतदान इसका प्रमाण है। श्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस देश के लिए अपने जीवन का बलिदान देने वालों का कभी सम्मान नहीं कर सकती। ये वही कांग्रेस है जिसने वन रैंक वन पेंशन के लिए हमारी सेनाओं के जवानों को 4 दशक तक इंतजार कराया।
कांग्रेस ने हमारे फौजियों से झूठ बोला। ये कहते थे कि वन रैंक वन पेंशन OROP से खजाने पर बोझ पड़ेगा, लेकिन मोदी ने फौजी परिवारों के हितों के आगे कभी भी खजाने को नहीं देखा। और इसलिए 2014 में सरकार बनने के बाद हमने OROP लागू किया। अभी तक फौजी परिवारों को 1,20,000 करोड़ रुपए से अधिक मिल चुका है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि हाल ही में वन रैंक वन पेंशन की समीक्षा की गई, जिससे सेना के जवानों के परिवारों को और अधिक धनराशि मिलेगी। प्रधानमंत्री ने स्मरण कराया कि वर्ष 2016 में आज ही के दिन भारत ने पाकिस्तान के विरुद्ध सर्जिकल स्ट्राइक की थी। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी भी आज केंद्र शासित प्रदेश में रैलियों को संबोधित करेंगी। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की विशेष श्रृंखला में आज हम चर्चा करेंगे सांबा विधानसभा सीट की।
जिले में कुल 2,60,999 मतदाता पंजीकृत हैं, जिनमें 1,33,736 पुरुष और 1,27,261 महिलाएं और 2 ट्रांसजेंडर मतदाता शामिल हैं। चुनाव आयोग ने जिले भर में 366 मतदान केंद्र स्थापित किए हैं। सांबा जिले में 3 विधानसभा क्षेत्र हैं और सांबा विधानसभा क्षेत्र जिले का प्रमुख विधानसभा क्षेत्र है। चुनाव आयोग ने निर्वाचन क्षेत्र में 151 मतदान केंद्र स्थापित किए हैं, जिनमें 18 क्रिटिकल, 3 7 पिंक, 1 PWD और 1 आदर्श मतदान केंद्र शामिल है। चुनाव के लिए कुल 14 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं, जिनमें 5 निर्दलीय उम्मीदवार भी शामिल हैं। सुचारू और घटना मुक्त चुनाव सुनिश्चित कराने के लिए अन्य व्यवस्थाओं के अलावा पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था भी की गई है। आकाशवाणी के लिए जम्मू से मैं एन गुलशन रैना।
उधर हरियाणा में 90 विधानसभा सीटों के लिए 5 अक्टूबर को होने वाले मतदान के लिए चुनाव प्रचार तेज हो गया है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कल अंबाला, कुरुक्षेत्र और रेवाड़ी में जनसभाओं को संबोधित किया। उन्होंने हरियाणा में भाजपा सरकार द्वारा की गई पहलों का उल्लेख किया। कांग्रेस नेता कुमारी शैलजा ने कल कालांवाली और डबवाली में रैलियों को संबोधित किया। आम आदमी पार्टी और अन्य क्षेत्रीय दलों के नेता भी अपने अपने उम्मीदवारों के पक्ष में प्रचार कर रहे हैं। दोनों राज्यों में मतगणना 8 अक्टूबर को होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि सच में बड़ी ताकत है, इसे कानूनी बिरादरी सशक्त बनती है। राष्ट्रपति आज हैदराबाद में नलसर विश्वविद्यालय के 21वें दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रही थीं। उन्होंने समाज के सबसे निचले पायदान पर जी रहे वंचित वर्गों को सामाजिक न्याय दिलाने के लिए काम करने की आवश्यकता पर बल दिया। राष्ट्रपति ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली छात्राओं की सराहना की और उनसे महिला सशक्तिकरण के लिए काम करने का आह्वान किया।
In 2 days convocation, members of bar and bench are gathered here. Every segment of the society is a stakeholder in promoting safety of women. I urge upon NALSAR, including its alumni, to enlist the support of all stakeholders and help in setting up a nationwide network of women advocates and law students. This network will work with the mandate to make concerted efforts to prevent atrocities against women and deal with cases of such atrocities.
ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ द्वारा जम्मू कश्मीर का जिक्र किए जाने पर भारत ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। भारत ने कहा है कि सैन्य शासन, आतंकवाद, नशीले पदार्थों की तस्करी और अंतर्राष्ट्रीय अपराधों के लिए पूरी दुनिया में कुख्यात पाकिस्तान जैसे देश ने विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र की आलोचना करने का दुस्साहस किया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में एक सत्र को संबोधित करते हुए भारतीय राजनयिक भाविका मंगला नंदन ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने भारत के अविभाज्य और अभिन्न अंग जम्मू कश्मीर में चुनावों को बाधित करने के लिए लगातार आतंकवाद का इस्तेमाल किया है।
As the world knows, Pakistan has long employed cross-border terrorism as a weapon against its neighbors. It has attacked our parliament, our financial capital Mumbai, marketplaces and pilgrimage routes.
संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79वीं सत्र में आम बहस के दौरान शहबाज शरीफ द्वारा जम्मू कश्मीर का मुद्दा उठाए जाने पर भारत ने जवाब दिए जाने के अपने अधिकार का इस्तेमाल करते हुए ये बातें कहीं। बिम्स्टेक नेताओं की आगामी शिखर बैठक की तैयारी के सिलसिले में न्यूयॉर्क में आज विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने बिम्स्टेक देशों के विदेश मंत्रियों की अनौपचारिक बैठक की अध्यक्षता की। डॉ जयशंकर ने कहा कि बिम्स्टेक उत्कृष्टता केंद्रों का विकास एक सामूहिक संकल्प है और ये पड़ोस प्रथम विजन सागर तथा एक्ट ईस्ट पॉलिसी के अनुसार बिम्स्टेक के साथ व्यापक साझेदारी में भारत की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर आज न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79वीं सत्र को संबोधित करेंगे जिसका विषय है कोई पीछे न रह जाए, वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों के लिए शांति, सतत विकास और मानवीय गरिमा के उन्नयन के लिए मिलकर काम करना। विदेश मंत्री संयुक्त राष्ट्र महासभा के इस सत्र में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। इसराइल के रक्षा बलों ने दावा किया है कि कल बेरूत पर किए गए उसके हमले में हिजबुल्ला नेता हसन नसरुल्ला मारा गया है। सोशल मीडिया पर जारी एक बयान में कहा गया है कि हसन नसरुल्ला अब विश्व को आतंकित नहीं कर पाएगा। नसरुल्ला और हिजबुल्ला के अन्य कमांडरों को निशाना बनाकर बेरूत पर इसराइल द्वारा रात भर किए गए हमलों के बाद ये बयान जारी किया गया है। हालांकि हिजबुल्ला ने इस बारे में कोई टिप्पणी नहीं की है। केंद्रीय भारी उद्योग और इस्पात राज्य मंत्री भूपति राजू श्रीनिवास वर्मा ने कहा है कि देश की वैश्विक इस्पात उत्पादन क्षमता लगभग 2.5 अरब टन तक पहुंच गई है। नई दिल्ली में कल खनिज धातु, धातु विज्ञान और सामग्री संबंधी अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी और सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए श्री वर्मा ने इस्पात क्षेत्र में प्रौद्योगिकी से जुड़े नवाचार तथा सामग्री दक्षता की सराहना की। नई दिल्ली स्थित यशोभूमि में इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर में आयोजित खनिज धातु, धातु विज्ञान और सामग्री संबंधी अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी और सम्मेलन का 14वां संस्करण कल संपन्न होगा। केंद्रीय सूचना संसदीय कार्य राज्य मंत्री डॉ एल मुरुगन ने आज चेन्नई में एक पेड़ माँ के नाम अभियान में भाग लिया। इस अवसर पर श्री मुरुगन ने कहा कि पिछले 10 वर्ष से सरकार राष्ट्र के विकास और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए उत्सुक रही है। श्री मुरुगन ने जनता से 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में खादी पहनने की अपील की। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन ने कहा है कि पौधारोपण से जलवायु परिवर्तन से निपटने में मदद मिलेगी। श्री रंजन ने आज नई दिल्ली में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत पौधारोपण अभियान का नेतृत्व किया। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने बच्चों से कहा कि वे व्यापक पौधारोपण अभियान के बारे में जागरूकता फैलाएं। श्री रंजन और मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन ने भी इस अभियान के तहत पौधा लगाया।
सब लोग अपने अपने गांव में जाइए, अपने अभिभावकों से कहिए कि हर आदमी 5-5 पेड़ लगाओ। प्रधानमंत्री जी ने एक कहा है, हम 5 पेड़ लगा के प्रधानमंत्री जी को कवर करेंगे कि हमने 5 पेड़ लगाए। और इस अभियान को आप अगर सफल बनाएंगे, आने वाला भविष्य सुरक्षित होगा, पर्यावरण से सुरक्षित होगा, जलवायु परिवर्तन से सुरक्षित होगा।
ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। केंद्रीय खुफिया एजेंसियों ने संभावित आतंकवादी हमले की चेतावनी के बाद मुंबई पुलिस ने वित्तीय राजधानी में हाई अलर्ट जारी किया है। धार्मिक स्थलों और भीड़भाड़ वाले इलाकों तथा संवेदनशील स्थानों पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। नवरात्रि पर्व के मद्देनजर सिद्धि विनायक मंदिर सहित कई लोकप्रिय मंदिरों में भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है और अतिरिक्त सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने आज स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने भगत सिंह को नमन करते हुए कहा कि वो एक ऐसे अमर स्वतंत्रता सेनानी हैं जिन्होंने मातृभूमि के सम्मान की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। स्वर कोकिला लता मंगेशकर की आज जयंती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। प्रस्तुत है उनके संगीत में जीवन पर आकाशवाणी की ओर से विशेष श्रद्धांजलि।
पालनहारे निर्गुण नारे।
स्वर कोकिला के नाम से विश्व विख्यात पार्श्व गायिका लता मंगेशकर की आज 95वीं जयंती है। लता मंगेशकर का जन्म 28 सितंबर 1929 को इंदौर में हुआ। उन्होंने दशकों तक अपनी मनमोहक आवाज से करोड़ों लोगों को मंत्रमुग्ध किया। लगभग 70 वर्ष से अधिक के अपने संगीतमय सफर में उन्होंने विभिन्न भाषाओं में 25,000 से अधिक गानों को अपनी मधुर आवाज दी। लता दीदी अपनी विशिष्ट और मधुर आवाज के लिए भारत रत्न से भी सम्मानित की गयी। उनकी आवाज को सुनकर कभी कोई भाव विभोर हो गया तो कभी उनकी आवाज ने सीमाओं की रक्षा करते हुए जवानों को देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत कर दिया।
मेरे वतन के लोग जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए
लता मंगेशकर जैसे व्यक्तित्व इस दुनिया में विरले ही जन्म लेते हैं। 6 फरवरी 2022 को स्वर कोकिला लता मंगेशकर ने मुंबई में अपनी अंतिम सांस ली।
लता मंगेशकर के भाई हृदयनाथ मंगेशकर ने अपनी बहन और श्री मोदी के बीच सौहार्दपूर्ण संबंधों को याद करते हुए एक लेख में कहा कि लता दीदी हमेशा प्रधानमंत्री के रूप में श्री मोदी की उपलब्धियों और उनके द्वारा किए जा रहे कार्यों पर गर्व व्यक्त करती थीं। उनका मानना था कि भाई नरेंद्र मोदी देश को आगे लेकर जाएंगे। भारत और बांग्लादेश के बीच दूसरा और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच कानपुर में हो रहा है, हालांकि बारिश के कारण मैच बाधित हुआ है। बांग्लादेश ने पहली पारी में अब तक 3 विकेट पर 107 रन बनाए हैं। मैच के पहले दिन कल सिर्फ 35 ओवर का ही खेल हुआ था। 2 क्रिकेट टेस्ट मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने आज लोगों से समाज में शांति से रहने के लिए अन्य संस्कृतियों के प्रति सामंजस्य स्थापित करने का आग्रह किया। नई दिल्ली में आकाशवाणी रंग भवन में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री खान ने कहा कि भारत हमेशा हर संस्कृति का सम्मान करता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि उनकी सरकार ने 2014 में सत्ता में आने के बाद सशस्त्र बलों के लिए वन रैंक वन पेंशन योजना शुरू की। अब तक 1,20,000 करोड़ रुपए से अधिक वितरित हुए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महिलाओं के खिलाफ अत्याचार पर चिंता जताई। महिला सशक्तिकरण के लिए संयुक्त प्रयास का आह्वान किया। संयुक्त राष्ट्र महासभा में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ द्वारा जम्मू कश्मीर का जिक्र करने पर भारत ने पलटवार किया और इसे पाखंड की पराकाष्ठा करार दिया। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज न्यूयॉर्क में 79वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा के उच्च स्तरीय सत्र को संबोधित करेंगे। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।